Cambridge International Examinations. International General Certificate of Secondary Education. November 2015 examination in Hindi as a second language. Paper 2. Listening comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
संवाद एक.
भैया ये अंगूर किस भाव दिए?
बड़े सस्ते हैं मेम साहब, 400 रुपए किलो. चमन के हैं, शरबती अंगूर.
और वे आम किस भाव हैं?
बड़े बढ़िया हैं मेम साहब, 200 रुपए किलो लगा देंगे आपके लिए.
लेकिन ये हरे क्यों हैं? पके नहीं हैं क्या?
ये लंगड़े आम हैं मेम साहब. देखने में हरे होते हैं पर होते हैं गुड़ की तरह मीठे. कहिए कितने तोल दूं?
बस 1 किलो.
संवाद दो.
वाजिदपुर आकर मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर की आंखें भर आईं. सिर्फ वे ही नहीं, सामने खड़े लोग भी भावुक हो गए. ऐसा लग रहा था मानो सालों बाद एक बिछड़ा अपनों के बीच आ गया हो. बात भी बिल्कुल ऐसी ही थी. 100 साल पहले पटना के इसी वाजिदपुर गांव से राष्ट्रपति राजकेश्वर के परदादा मॉरिशस गए थे. उनके वंशजों के 2 परिवार आज भी वाजिदपुर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं.
संवाद तीन.
भाई साहब ये एम ब्लॉक किधर होगा? हमें 435 सी में जाना है.
एम ब्लॉक सामने की मुख्य सड़क के उस पार है. कौन सा फ्लैट कहा आपने?
पते में तो 435 सी लिखा है भाई साहब.
इसका मतलब 435 की तीसरी मंजिल है. देखिए आप इस समय के ब्लॉक में हैं. यहाँ से सामने वाली मुख्य सड़क पर जाइए और दाहिनी तरफ मुड़ जाइए. लगभग 0.5 किलोमीटर के बाद एक चौराहा आएगा. उसे पार करते ही बाईं तरफ एम ब्लॉक पड़ता है. वहाँ 435 नंबर ढूंढ लीजिए.
शुक्रिया भाई साहब.
संवाद चार.
हेलो अनिल, मैं स्वाति बोल रही हूँ. माफ करना, आज मैं लाइब्रेरी नहीं आ सकती क्योंकि कानपुर से अपनी पुरानी सहेली सीमा एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई है. वह तुमसे भी मिलना चाहती है. मैं अभी उसे लेकर बाजार जा रही हूँ. वहाँ कुछ खरीदारी करने के बाद हम घंटाघर के पास वाले कॉफी हाउस में बैठेंगे. तुम भी वहाँ शाम को 5 और 6 बजे के बीच आ सको तो अच्छा रहेगा. अगर तुम्हारा कोई और कार्यक्रम हो तो फोन जरूर कर देना. बाय.
संवाद पांच.
क्या तलाश कर रहे हैं? कोई मदद करूं आपकी?
जी थोड़ी दुविधा में हूं. मेरी नानी का जन्मदिन है, समझ नहीं आता कि क्या ले जाऊं.
वैसे महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक तोहफा तो चॉकलेट होता है.
लेकिन वे मीठा नहीं खाती.
ओह, सेंट के बारे में क्या ख्याल है?
पता नहीं नानी को सेंट पसंद आए या नहीं.
तो फिर उपन्यास ले लीजिए. एकदम नया उपन्यास आया है द्रौपदी की नजर से महाभारत की कहानी पर.
ये अच्छा रहेगा, उन्हें पौराणिक कहानियां बहुत पसंद है.
संवाद 6।
रेडियो चटनी 95.4 FM पर। अब वक्त है यातायात खबरों का। सुबह का कोहरा अब छटने लगा है। नई दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग से रिंग रोड तक यातायात बेरोक टोक चल रहा है, लेकिन आश्रम चौक के पास 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है और गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर एक बस की टक्कर हो जाने के कारण हवाई अड्डे जाने वाले राजमार्ग 3 पर यातायात रुका हुआ है, लेकिन उधर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात में कोई रुकावट नहीं है।
अभ्यास 1 के इन संवादों को अब आप फिर से सुनेंगे।
संवाद 1।
भैया, ये अंगूर किस भाव दिए?
बड़े सस्ते हैं मेम साहब, 400 रुपए किलो। चमन के हैं, शरबती अंगूर।
और वे आम किस भाव हैं?
बड़े बढ़िया हैं मेम साहब, 200 रुपए किलो लगा देंगे आपके लिए।
लेकिन ये हरे क्यों हैं? पके नहीं हैं क्या?
ये लंगड़े आम हैं मेम साहब, देखने में हरे होते हैं पर होते हैं गुड़ की तरह मीठे। कहिए कितने तोल दूं?
बस 1 किलो।
संवाद 2।
वाजिदपुर आकर मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर की आंखें भर आईं। सिर्फ वे ही नहीं, सामने खड़े लोग भी भावुक हो गए। ऐसा लग रहा था मानो सालों बाद एक बिछड़ा अपनों के बीच आ गया हो। बात भी बिल्कुल ऐसी ही थी। 100 साल पहले पटना के इसी वाजिदपुर गांव से राष्ट्रपति राजकेश्वर के परदादा मॉरिशस गए थे। उनके वंशजों के 2 परिवार आज भी वाजिदपुर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं।
संवाद 3।
भाई साहब, यह एम ब्लॉक किधर होगा? हमें 435 सी में जाना है।
एम ब्लॉक सामने की मुख्य सड़क के उस पार है। कौन सा फ्लैट कहा आपने?
पते में तो 435 सी लिखा है भाई साहब।
इसका मतलब 435 की तीसरी मंजिल है। देखिए, आप इस समय के ब्लॉक में हैं। यहाँ से सामने वाली मुख्य सड़क पर जाइए और दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। लगभग 0.5 किलोमीटर के बाद एक चौराहा आएगा, उसे पार करते ही बाईं तरफ एम ब्लॉक पड़ता है। वहां 435 नंबर ढूंढ लीजिए।
शुक्रिया भाई साहब।
संवाद 4।
हेलो अनिल, मैं स्वाति बोल रही हूँ। माफ करना, आज मैं लाइब्रेरी नहीं आ सकती क्योंकि कानपुर से अपनी पुरानी सहेली सीमा एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई है। वह तुमसे भी मिलना चाहती है। मैं अभी उसे लेकर बाजार जा रही हूँ। वहाँ कुछ खरीदारी करने के बाद हम घंटाघर के पास वाले कॉफी हाउस में बैठेंगे। तुम भी वहाँ शाम को 5 और 6 बजे के बीच आ सको तो अच्छा रहेगा। अगर तुम्हारा कोई और कार्यक्रम हो तो फोन जरूर कर देना। बाय।
संवाद 5।
क्या तलाश कर रहे हैं? कोई मदद करूं आपकी?
जी, थोड़ी दुविधा में हूं। मेरी नानी का जन्मदिन है, समझ नहीं आता कि क्या ले जाऊं।
वैसे महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक तोहफा तो चॉकलेट होता है,
लेकिन वे मीठा नहीं खाती।
ओ, सेंट के बारे में क्या ख्याल है?
पता नहीं नानी को सेंट पसंद आए या नहीं।
तो फिर उपन्यास ले लीजिए। एकदम नया उपन्यास आया है, द्रौपदी की नजर से महाभारत की कहानी पर।
ये अच्छा रहेगा, उन्हें पौराणिक कहानियां बहुत पसंद है।
संवाद 6।
रेडियो चटनी 95.4 FM पर। अब वक्त है यातायात खबरों का। सुबह का कोहरा अब छटने लगा है। नई दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग से रिंग रोड तक यातायात बेरोक टोक चल रहा है, लेकिन आश्रम चौक के पास 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है और गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर एक बस की टक्कर हो जाने के कारण हवाई अड्डे जाने वाले राजमार्ग 3 पर यातायात रुका हुआ है, लेकिन उधर नोएडा की ओर जाने वाले यातायात में कोई रुकावट नहीं है।
यह अभ्यास 1 का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास 2 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 2 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 2 प्रश्न 7। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक वैद्य सोमनाथ पाठक से आरोग्य की संवाददाता सुधा रंगनाथन की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
वैद्य सोमनाथ पाठक जी, आरोग्य के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद सुधा जी।
पाठक जी, नीम का पेड़ पेट और त्वचा की बीमारियों में फायदेमंद होता है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन अब सुन रहे हैं कि कोलकाता के वैज्ञानिक नीम की पत्तियों से कैंसर का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह सही है?
बिल्कुल सही है सुधा जी। कोलकाता के चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की पत्तियों में कैंसर का फैलाव रोकने की क्षमता होती है।
लेकिन नीम की पत्तियों में ऐसा क्या है पाठक जी? वैज्ञानिक किस आधार पर यह बात कह रहे हैं?
उनका कहना है कि नीम की पत्तियों में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर की रोग रक्षा प्रणाली की उन कोशिकाओं की संख्या और शक्ति को बढ़ाता है जो कैंसर को मारती हैं। इससे कैंसर की कोशिकाएं फैल नहीं सकती और रोगी ठीक होने लगता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने केवल चूहों पर ही इसका परीक्षण करके देखा है, जो कि सफल रहा है।
तो इंसानों पर इसका परीक्षण करने और दवा बनाने में कितना समय और लगेगा?
ये काफी लंबी प्रक्रिया है सुधा जी। पहले तो ये पता लगाना होगा कि नीम की पत्तियों का यह प्रोटीन उन कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम कर पाएगा या नहीं जिन पर आम दवाएं बेअसर हो जाती हैं। उसके बाद ये देखना होगा कि वह हमारे शरीर पर कोई प्रतिकूल असर तो नहीं डालता। उसके बाद इंसानों पर परीक्षण होगा, जिसके सफल होने पर ही दवा बन सकती है।
अगर यह दवा बनी तो एक तो विदेशी दवाओं के मुकाबले काफी सस्ती होगी और दूसरे नीम का महत्व और बढ़ जाएगा।
बेशक, वैसे नीम की ख्याति इसके बिना भी इतनी फैल चुकी है कि अब तो दुनिया के कोने कोने में इसे लगाया जा रहा है। मेक्सिको के स्कूलों में नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुझे पेरू जाने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि उत्तरी पेरू के रेगिस्तानी तटों पर बड़ी संख्या में नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं।
लेकिन क्यों पाठक जी, पेरू में लोग नीम क्यों लगा रहे हैं?
वहां के किसानों का कहना था कि प्रशांत महासागर के तट के निकट होने की वजह से वहां के रेगिस्तान में और कोई पेड़ आसानी से नहीं पनप सकता। नीम का पेड़ एक तो उस सूखे वातावरण में लग जाता है और दूसरे वह मिट्टी को सुधारता है और उसकी निमोरी के तेल से मच्छरों पर नियंत्रण करने में भी आसानी होती है।
अफ्रीका में क्या स्थिति है? क्या वहां के लोग भी नीम के गुणों के बारे में जानते हैं?
नहीं जानते हैं तो वे भी जल्दी ही जानने लगेंगे, क्योंकि नीम से बनी सामग्री बेचने वाली अमरीकी कंपनी जस्ट नीम अब अपने मुनाफे से अफ्रीका की बंजर जमीन पर नीम के पेड़ लगा रही है। इसी तरह अमरीका का टेक्सास विश्वविद्यालय अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की जलवायु को बेहतर बनाने के लिए वहां नीम के पेड़ लगाने की योजना बना रहा है।
और भारत के लोग तो नीम के महत्व को जानते ही हैं।
भारत ही नहीं समूचे दक्षिण एशिया और बर्मा में नीम हमारे दैनिक जीवन का अंग रहा है। सुबह की दातुन से लेकर नहाने, रोगों से बचाव करने, कीटों से फसलों की रक्षा करने तक हर काम में नीम का प्रयोग किया जाता है। कहावत में भले ही नीम को खतरनाक हकीम के साथ जोड़ दिया गया हो, लेकिन वास्तविकता में नीम हमारे लिए कुदरत के किसी हकीम से कम नहीं है।
वैद्य सोमनाथ पाठक जी, नीम पर इतनी रोचक जानकारी के लिए धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। वैद्य सोमनाथ पाठक जी, आरोग्य के पाठकों की ओर से आपका स्वागत है।
धन्यवाद सुधा जी।
पाठक जी, नीम का पेड़ पेट और त्वचा की बीमारियों में फायदेमंद होता है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन अब सुन रहे हैं कि कोलकाता के वैज्ञानिक नीम की पत्तियों से कैंसर का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह सही है?
बिल्कुल सही है सुधा जी। कोलकाता के चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की पत्तियों में कैंसर का फैलाव रोकने की क्षमता होती है।
लेकिन नीम की पत्तियों में ऐसा क्या है पाठक जी, वैज्ञानिक किस आधार पर यह बात कह रहे हैं?
उनका कहना है कि नीम की पत्तियों में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर की रोग रक्षा प्रणाली की उन कोशिकाओं की संख्या और शक्ति को बढ़ाता है जो कैंसर को मारती हैं। इससे कैंसर की कोशिकाएं फैल नहीं सकती और रोगी ठीक होने लगता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने केवल चूहों पर ही इसका परीक्षण करके देखा है, जो कि सफल रहा है।
तो इंसानों पर इसका परीक्षण करने और दवा बनाने में कितना समय और लगेगा?
ये काफी लंबी प्रक्रिया है सुधा जी। पहले तो ये पता लगाना होगा कि नीम की पत्तियों का यह प्रोटीन उन कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम कर पाएगा या नहीं जिन पर आम दवाएं बेअसर हो जाती हैं। उसके बाद ये देखना होगा कि वह हमारे शरीर पर कोई प्रतिकूल असर तो नहीं डालता। उसके बाद इंसानों पर परीक्षण होगा, जिसके सफल होने पर ही दवा बन सकती है।
अगर यह दवा बनी तो एक तो विदेशी दवाओं के मुकाबले काफी सस्ती होगी और दूसरे नीम का महत्व और बढ़ जाएगा।
बेशक, वैसे नीम की ख्याति इसके बिना भी इतनी फैल चुकी है कि अब तो दुनिया के कोने कोने में इसे लगाया जा रहा है। मेक्सिको के स्कूलों में नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुझे पेरू जाने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि उत्तरी पेरू के रेगिस्तानी तटों पर बड़ी संख्या में नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं।
लेकिन क्यों पाठक जी, पेरू में लोग नीम क्यों लगा रहे हैं?
वहां के किसानों का कहना था कि प्रशांत महासागर के तट के निकट होने की वजह से वहां के रेगिस्तान में और कोई पेड़ आसानी से नहीं पनप सकता। नीम का पेड़ एक तो उस सूखे वातावरण में लग जाता है और दूसरे वह मिट्टी को सुधारता है और उसकी निमोरी के तेल से मच्छरों पर नियंत्रण करने में भी आसानी होती है।
अफ्रीका में क्या स्थिति है, क्या वहां के लोग भी नीम के गुणों के बारे में जानते हैं?
नहीं जानते हैं तो वे भी जल्दी ही जानने लगेंगे, क्योंकि नीम से बनी सामग्री बेचने वाली अमरीकी कंपनी जस्ट नीम अब अपने मुनाफे से अफ्रीका की बंजर जमीन पर नीम के पेड़ लगा रही है। इसी तरह अमरीका का टेक्सास विश्वविद्यालय अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की जलवायु को बेहतर बनाने के लिए वहां नीम के पेड़ लगाने की योजना बना रहा है।
और भारत के लोग तो नीम के महत्व को जानते ही हैं।
भारत ही नहीं समूचे दक्षिण एशिया और बर्मा में नीम हमारे दैनिक जीवन का अंग रहा है। सुबह की दातुन से लेकर नहाने, रोगों से बचाव करने, कीटों से फसलों की रक्षा करने तक हर काम में नीम का प्रयोग किया जाता है। कहावत में भले ही नीम को खतरनाक हकीम के साथ जोड़ दिया गया हो, लेकिन वास्तविकता में नीम हमारे लिए कुदरत के किसी हकीम से कम नहीं है।
वैद्य सोमनाथ पाठक जी, नीम पर इतनी रोचक जानकारी के लिए धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन, प्रश्न 8 से 13। विभावरी संस्था की कार्यकर्ता प्रभा श्रोत्री के साथ पत्रकार रजत खेर की बातचीत को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी। प्रभा जी, पर्यावरण और विकास मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
प्रभा जी, विभावरी किसी साहित्यिक संस्था का नाम लगता है, क्या आपकी संस्था साहित्यिक काम भी करती है?
काश कि हम वह सब भी कर पाते रजत जी, परंतु फिलहाल तो हमारी संस्था समाज सेवा के काम ही करती है, जिनका मुख्य उद्देश्य गांव की महिलाओं को सजग और सशक्त बनाना है।
विभावरी ने हाल में कई पानी यात्राएं निकाली थी, उनका इससे क्या संबंध है?
रजत जी, घर में पानी की व्यवस्था औरतों को ही करनी पड़ती है। भारत के बहुत से पठारी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में औरतों को पानी आज भी मीलों सिर पर ढोकर लाना पड़ता है। इसलिए हमने संकट का हल निकालने के लिए औरतों को ही आगे किया और पानी यात्राएं निकाली। इनकी शुरुआत जल संकट से घिरे मध्य प्रदेश के पनपाटा गाँव से की गई।
लेकिन आपने पनपाटा गांव को ही क्यों चुना?
इसलिए कि मालवा के पठार पर बसा पनपाटा आजादी के दिनों से पानी की राह देख रहा है। बंजारों के इस गांव के आसपास न कोई नदी है, न नहरें हैं, और कुओं का पानी भी सूख चुका है। इसलिए हमने पनपाटा की बंजारा औरतों को पानी यात्रा निकालने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे गांव के बाहर एक तालाब खोदने के लिए एकजुट हो सके।
कितना समय लगा आपको इस काम में? क्या औरतें आसानी से तैयार हो गईं?
औरतें तो आसानी से तैयार हो गईं, लेकिन मर्दों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनका घाघरा पलटन कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन जब इसी घाघरा पलटन ने पठार की काली चट्टानों की ढलानों पर मेड़ बांधकर चंद दिनों के भीतर ही एक तालाब बना दिया और वह बारिश के पानी से लबालब भर गया, तब जाकर मर्दों की आंखें खुली। फिर तो वे भी धीरे धीरे पानी यात्रा के हमारे आंदोलन में शामिल हो गए।
इस तालाब का पनपाटा के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा?
इस तालाब से लोगों को बारिश का पानी जमा करने से होने वाले लाभों का प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिला। तालाब के आसपास कुओं में पानी मिलने लगा, हरियाली बढ़ने लगी और मवेशियों का स्वास्थ्य बेहतर रहने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव वालों में सरकार के भरोसे न बैठकर अपनी समस्याएं खुद हल करने की भावना जागी।
पनपाटा की सफलता के बाद पानी यात्रा लेकर आप स्वयं आसपास के गांव में गए या वहां के लोगों ने आपको बुलाया?
दोनों ही बातें हुईं। हम तो आसपास के गांव में जागरूकता फैलाना चाहते ही थे, लेकिन ये गांव भी हमारी सहायता चाहते थे। हमने उन्हें पठारी ढलानों पर मेड़ बांधकर और छोटे छोटे बांध बनाकर बारिश का पानी रोकना सिखाया, साथ ही सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपनी आमदनी बढ़ाने के रास्ते भी सिखाए। इससे गांव में आत्मविश्वास और सामाजिक बदलाव की भावना पैदा हुई।
प्रभा जी, विभावरी के इस सफल आंदोलन की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद रजत जी।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। प्रभा जी, पर्यावरण और विकास मंच पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद
प्रभा जी। विभावरी किसी साहित्यिक संस्था का नाम लगता है, क्या आपकी संस्था साहित्यिक काम भी करती है?
काश कि हम वह सब भी कर पाते रजत जी, परंतु फिलहाल तो हमारी संस्था समाज सेवा के काम ही करती है, जिनका मुख्य उद्देश्य गांव की महिलाओं को सजग और सशक्त बनाना है।
विभावरी ने हाल में कई पानी यात्राएं निकाली थी, उनका इससे क्या संबंध है?
रजत जी, घर में पानी की व्यवस्था औरतों को ही करनी पड़ती है। भारत के बहुत से पठारी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में औरतों को पानी आज भी मीलों सिर पर ढोकर लाना पड़ता है, इसलिए हमने संकट का हल निकालने के लिए औरतों को ही आगे किया और पानी यात्राएं निकाली। इनकी शुरुआत जल संकट से घिरे मध्य प्रदेश के पनपाटा गांव से की गई।
लेकिन आपने पनपाटा गांव को ही क्यों चुना?
इसलिए कि मालवा के पठार पर बसा पनपाटा आजादी के दिनों से पानी की राह देख रहा है। बंजारों के इस गांव के आसपास न कोई नदी है, न नहरें हैं, और कुओं का पानी भी सूख चुका है, इसलिए हमने पनपाटा की बंजारा औरतों को पानी यात्रा निकालने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे गांव के बाहर एक तालाब खोदने के लिए एकजुट हो सके।
कितना समय लगा आपको इस काम में? क्या औरतें आसानी से तैयार हो गईं?
औरतें तो आसानी से तैयार हो गईं, लेकिन मर्दों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनका घाघरा पलटन कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन जब इसी घाघरा पलटन ने पठार की काली चट्टानों की ढलानों पर मेड़ बांधकर चंद दिनों के भीतर ही एक तालाब बना दिया और वह बारिश के पानी से लबालब भर गया, तब जाकर मर्दों की आंखें खुली। फिर तो वे भी धीरे धीरे पानी यात्रा के हमारे आंदोलन में शामिल हो गए।
इस तालाब का पनपाटा के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा?
इस तालाब से लोगों को बारिश का पानी जमा करने से होने वाले लाभों का प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिला। तालाब के आसपास कुओं में पानी मिलने लगा, हरियाली बढ़ने लगी और मवेशियों का स्वास्थ्य बेहतर रहने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि गांव वालों में सरकार के भरोसे न बैठकर अपनी समस्याएं खुद हल करने की भावना जागी।
पनपाटा की सफलता के बाद पानी यात्रा लेकर आप स्वयं आसपास के गांव में गए या वहां के लोगों ने आपको बुलाया?
दोनों ही बातें हुई। हम तो आसपास के गांव में जागरूकता फैलाना चाहते ही थे, लेकिन ये गांव भी हमारी सहायता चाहते थे। हमने उन्हें पठारी ढलानों पर मेड़ बांधकर और छोटे छोटे बांध बनाकर बारिश का पानी रोकना सिखाया, साथ ही सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपनी आमदनी बढ़ाने के रास्ते भी सिखाए। इससे गांव में आत्मविश्वास और सामाजिक बदलाव की भावना पैदा हुई।
प्रभा जी, विभावरी के इस सफल आंदोलन की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद रजत जी।
अभ्यास तीन अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास चार सुनेंगे। अब आप अभ्यास चार के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास चार प्रश्न 14 से 20। भारत में कठपुतली की लोक कला की स्थिति पर राष्ट्रीय लोक कला अकादमी के निदेशक नरहरि नाहटा के विचारों को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये विचार आपको दो बार सुनाए जाएंगे।
नमस्कार, मैं हूं नरहरि नाहटा। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, रंग बिरंगे कपड़ों पर गोटे और बारीक काम से बनी कठपुतलियां हर किसी के मन को मोह लेती हैं। कठपुतली का इतिहास बहुत पुराना है। पुतली नाटक का पहला उल्लेख आचार्य पाणिनि के व्याकरण में मिलता है, जिसकी रचना ईसा से 400 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। नाटकों में सूत्रधार की कल्पना भी पुतली नचाने वाले सूत्र या धागे से की गई है। कहानी सिंहासन 32 में भी विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों का जिक्र है। भारत से इस कला का विस्तार पूर्वी एशिया के देशों में हुआ। आज यह कला चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक के अनेक देशों में पहुंच चुकी है और इस विधा का मनोरंजन के अतिरिक्त शिक्षा और विज्ञापन जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुआयामी प्रयोग किया जा रहा है। भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथावस्तु में पौराणिक कहानियों और लोक कथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले कठपुतली खेलों में पृथ्वीराज चौहान, हीर रांझा और लैला मजनू जैसी लोक कथाएं ही दिखाई जाती थी, लेकिन अब महिला शिक्षा और परिवार नियोजन जैसे सामाजिक विषयों के कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में झलकता है। कठपुतली के विषय में भी यह बात पूरी तरह सच है। इनको माध्यम बनाकर कही गई कहानियों में भारत का इतिहास और साहित्य दोनों साकार हो उठते हैं। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम भी है, लेकिन मनोरंजन के नित नए साधन विकसित हो जाने से सदियों पुरानी यह कला अब पहले की तरह लोकप्रिय नहीं रह सकी है। महाराष्ट्र को कठपुतली की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन सिनेमा के आगमन के साथ वहां भी इस पारंपरिक लोक कला को क्षति पहुंची। बच्चे भी अब कठपुतली का तमाशा देखने की बजाय घर में बैठकर टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। बीकानेर निवासी राजा कठपुतली व अन्य इसी तरह की चीजें बेचने का काम करते हैं। उनका कहना है कि पेट पालने के लिए कठपुतली कलाकारों को गांव कस्बों से पलायन करना पड़ रहा है। कलाकारों ने नाच गाने व ढोल बजाने का काम शुरू कर लिया है। अनेक परिवार ऐसे भी हैं जो खेल न दिखाकर सिर्फ कठपुतली बनाकर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन कठपुतली कलाकार आज भी किसी अन्य व्यवसाय की बजाय कठपुतली बनाना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि कठपुतली से उनके पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई हैं, परंतु उन्हें इस बात का अफसोस है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति व कला को बचाने और प्रोत्साहन देने के तमाम दावों के बावजूद कठपुतली की कला को बचाने के लिए कोई समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
अभ्यास चार के ये विचार अब आप फिर से सुनेंगे।
नमस्कार, मैं हूं नरहरि नाहटा। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, रंग बिरंगे कपड़ों पर गोटे और बारीक काम से बनी कठपुतलियां हर किसी के मन को मोह लेती हैं। कठपुतली का इतिहास बहुत पुराना है। पुतली नाटक का पहला उल्लेख आचार्य पाणिनि के व्याकरण में मिलता है, जिसकी रचना ईसा से 400 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। नाटकों में सूत्रधार की कल्पना भी पुतली नचाने वाले सूत्र या धागे से की गई है। कहानी सिंहासन 32 में भी विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 पुतलियों का जिक्र है। भारत से इस कला का विस्तार पूर्वी एशिया के देशों में हुआ। आज यह कला चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक के अनेक देशों में पहुंच चुकी है और इस विधा का मनोरंजन के अतिरिक्त शिक्षा और विज्ञापन जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुआयामी प्रयोग किया जा रहा है। भारत में पारंपरिक पुतली नाटकों की कथावस्तु में पौराणिक कहानियों और लोक कथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले कठपुतली खेलों में पृथ्वीराज चौहान, हीर रांझा और लैला मजनू जैसी लोक कथाएं ही दिखाई जाती थी, लेकिन अब महिला शिक्षा और परिवार नियोजन जैसे सामाजिक विषयों के कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब लोक कलाओं में झलकता है। कठपुतली के विषय में भी यह बात पूरी तरह सच है। इनको माध्यम बनाकर कही गई कहानियों में भारत का इतिहास और साहित्य दोनों साकार हो उठते हैं। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम भी है, लेकिन मनोरंजन के नित नए साधन विकसित हो जाने से सदियों पुरानी यह कला अब पहले की तरह लोकप्रिय नहीं रह सकी है। महाराष्ट्र को कठपुतली की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन सिनेमा के आगमन के साथ वहां भी इस पारंपरिक लोक कला को क्षति पहुंची। बच्चे भी अब कठपुतली का तमाशा देखने की बजाय घर में बैठकर टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। बीकानेर निवासी राजा कठपुतली व अन्य इसी तरह की चीजें बेचने का काम करते हैं। उनका कहना है कि पेट पालने के लिए कठपुतली कलाकारों को गांव कस्बों से पलायन करना पड़ रहा है। कलाकारों ने नाच गाने व ढोल बजाने का काम शुरू कर लिया है। अनेक परिवार ऐसे भी हैं जो खेल न दिखाकर सिर्फ कठपुतली बनाकर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन कठपुतली कलाकार आज भी किसी अन्य व्यवसाय की बजाय कठपुतली बनाना पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि कठपुतली से उनके पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई हैं, परंतु उन्हें इस बात का अफसोस है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति व कला को बचाने और प्रोत्साहन देने के तमाम दावों के बावजूद कठपुतली की कला को बचाने के लिए कोई समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.